ओम शांति। आज 6 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल, तुम्हें अब इस शरीर को भूल जाना है, स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूं और मेरे को ये शरीर छोड़कर घर जाना है। तो फिर जिसको छोड़ना है उसमें फिर आसक्ति क्यों, उसमें हम क्यों अटके रहें? कर्मातीत बन घर चलना है, मतलब किसी भी कर्म का हमारे पास बंधन ना हो कि ये काम तो कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पर 1 सेकंड में शरीर छोड़ना है और उस समय याद आया ओहो ये काम तो कर लूं, तो अटक जाएगा, क्योंकि ये अटकाएगा भी तभी जब हमारा कार्मिक अकाउंट बाकी होगा। तो इसलिए हमें पहले से एक आदत बनानी है, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे यदि जाना है तो जाना है। मतलब आत्मिक स्मृति में हम तभी रह सकते हैं, आत्मिक स्थिति में शांत हम तभी रह सकते हैं जब ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर कर्म करना मेरी मर्जी है। तो जब हम अपने कर्म पर इतना अटेंशन देते हैं कि कोई भी कर्म हमें अपनी तरफ खींचे नहीं, यदि कोई भी कर्म हमें अपनी तरफ खींचता है रोकता है तो बंधन हो जाता है। तो इसलिए सुकर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे सबको सुख मिले, मुझे भी सुख मिले और सबको सुख मिले। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण मुझे या किसी भी आत्मा को दुख मिले। प्रश्न, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? अपनी अवस्था की क्या करनी है, हमको जांच करनी है कि कितनी हमारी अवस्था है, कैसी हमारी अवस्था है, तो उसके लिए बाबा कहते किन 3 की महिमा, कौन से 3 ऐसी बातें हैं जिसकी महिमा को सदा याद रखो। उत्तर, नंबर 1, निराकार की महिमा। निराकार, अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, सर्वज्ञ सर्वोच्च परमात्मा की महिमा, वो है निराकार। दूसरा है देवताओं की महिमा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, परमात्मा सबसे टॉप हो गया, तो 2nd नंबर पर है देवताओं की महिमा। और 3री स्वयं की महिमा, मैं आत्मा, मेरी महिमा क्या है, देवी देवताओं की महिमा क्या है और निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा क्या है, ये 3 महिमाएं हमें हमेशा याद रहें। अब जांच करनी है कि निराकार बाप के समान पूज्य बने, जैसे परम पिता परमात्मा सबके दिलों में पूज्य है, ऐसे हम भी सबके दिलों में पूज्य बने। और वो बन तभी सकते हैं जब हम सबका कल्याण करें। परमात्मा कल्याणकारी है, वो सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं तो सर्व आत्माएं उनको रिस्पेक्ट देती हैं। तो हम जितनी आत्माओं का कल्याण करेगा उतने से रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमें सारे विश्व का कल्याण करें तो हमें सारा विश्व भी अपने दिल में सम्मान देगा, क्योंकि जिसको सुख मिलेगा उसके दिल में ऑटोमेटिक हमारे प्रति सुख दुआओं की भावनाएं, दुआएं उनके अंदर आएंगी कि इन्होंने हमारा भला किया, कल्याण किया। उनके सब गुणों को धारण किया है। किसके सब गुणों को? परमपिता परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा है हमारा पिता उसके पास है खजाना गुणों का, और वो गुणों का खजाना हमने अपने जीवन में धारण करना है। परमात्मा के क्या गुण है? वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो सर्व का है, हद का नहीं है, वो बेहद का है। मतलब ये बातें परमात्मा के अंदर हैं, तो उन गुणों को हमें भी धारण करना है। कितना सहनशील है, कितना रहम दिल है, यानी ये सारे गुण परमात्मा के एक एक गुण को बैठकर स्मृति करना कि ये परमात्मा में गुण है, मेरे में कितना है, मेरे में ये गुण कम क्यों है, इस गुण को मैं कैसे पूरा करूं, तभी तो मैं बाप समान बनूंगा।
भगवान के गुणों को अपने साथ तुलना करनी,
अपने में लाना है। कौन सा नहीं है? परमात्मा में है, और उसमें से वो गुण मेरे में नहीं है। परमात्मा में तो है, मेरे में नहीं है। तो जब ये याद रहेगा तो नेचुरल आप पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बाप समान बनना है ना, बाप समान पूज्य बनना है ना, तो बाप समान कर्म करेंगे तब तो बाप समान पूज्य बनेंगे। तो ये गुण परमात्मा के अंदर जो हैं, वो सारे गुण अपने में धारण करने हैं। देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताएं कितना शाही नशे से चलते हैं, ऐसी चलन हमारी है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, वो मेरे में हैं, वो हमारे हैं, उनको मैंने अपने में धारण करना है। ये बैठकर हमें हर प्रकार से सोचना है, चेक करना है, और फिर अपने आप को संपन्न बनाना है। आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान, उनका स्वरूप बने। और आत्मा के गुण पहले थे परमात्मा के गुण, दूसरे थे देवताओं के गुण, और तीसरे हैं आत्मा के गुण। आत्मा के गुणों को भी जानना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। सातों गुण मुझ आत्मा में भी वही हैं जो मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा में है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ठीक है। एक एक बात जो आत्मा के बारे में परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई है, वो हमारी स्मृति में रहे, खाली स्मृति में नहीं रहे, उसका स्वरूप बन जाए, हम उसे स्वीकार करें कि हाँ, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, मेरे से शरीर है, मेरे बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, मेरी वैल्यू ही इस शरीर की वैल्यू है। मैं शांत स्वरूप हूं तो कहेंगे बड़ा शांत आत्मा है, शांत शरीर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मेरे में गुण होंगे, मुझ आत्मा में गुण होंगे, वही जो है स्थूल उसमें भी महसूस होंगे। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, बच्चों को कि आत्माओं का निवास स्थान क्या है, कहां रहती है आत्माएं? टावर ऑफ साइलेंस, शांति के देश में, शांति की चोटी है वो टावर होता है ना, सबसे ऊंचे, सबसे टॉप शांति जो है वो आत्माओं का रहने का स्थान है। टॉप स्थिति है, अवस्था है, बाकी कोई जगह नहीं है कि जहां जाके आत्मा बैठ जाए। उसको स्थान की जरूरत नहीं, वो कहीं भी अपने आप को क्या कर सकती है, जैसे हिमालय पहाड़ की चोटी है ना, वे बहुत ऊंची होती है, तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंच हो, वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं पहाड़ी पर चढ़ने में। कोई भी होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते, छोटी पर भी सबके बस की बात नहीं है चढ़ना, तो उनको बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाती है तभी वो एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो चल सकते, सब नहीं चल सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं कि तुम चोटी पर चढ़ो इस जगह, तुम्हें अपनी अवस्था की ऊंची चोटी चोटी पर चढ़ना है, तुम्हें इन दुनिया वाले स्थूल चोटियों पर नहीं चढ़ना है। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर, क्योंकि आत्मा पतित है सारी दुनिया में, और पावन बन के अपने घर जाना है। और उस घर को क्या कहा जाता है, शांति का टावर, शांति का टावर, टावर ऑफ साइलेंस। और वे फिर टावर ऑफ साइंस कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ाना घर की, उड़ना घर की तरफ है, वो कुछ भी करे, वो जहर डाले बम डाले कुछ डाले, क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा इस शरीर को शांत कर नष्ट कर, और क्या कर सकते हैं। वो बनाया इसलिए है ताकि आत्मा घर जाए और इन शरीरों का क्या किया जाए, सफाया किया जाए। कौन कौन लाएगा लकड़ियां, कौन उठाएगा, कौन जलाएगा, तो एकदम बम गिरा और सब शरीर साफ। शरीर ही खाली साफ नहीं होंगे, और भी सारा सामान क्या हो जाएगा, शुद्ध। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, वे फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है, यहां से कहां जाना है, ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस में, शांति के देश में। वहां से तुम आए हो फिर जाएंगे तब, जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो फिर सतो बनना, सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वे फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं, क्योंकि खुद उस रास्ते पर चलते हैं, तो औरों को भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ इसी रास्ते पर चलो। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, सुकर्म श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है, बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। पांच विकार बड़े दुश्मन है, ये पांच विकार क्या हैं, सबसे बड़े दुश्मन है। मोह भी विकर्म है, सिर्फ काम विकार नहीं, मोह, मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं, इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं, बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया हो, भल बुढ़िया हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। चाहे तुम बुढ़े हो चाहे बुढ़िया हो, तुम क्या हो, कौन हो, बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था, बुढ़े भी जाते थे तो उनको भी बच्चे कहते थे, तो बुढ़े को क्या लगता है, फिर जवान हो जाता है ना। आपको कोई कहे बच्चे, हाँ मजा आ जाएगा। और हाँ
सेना में ऐसा एक वर्ड था कि सीनियर होने का हर एक में बेटा ही बोलता था, हेलो बेटे जवान, हेलो जवान, हेलो बेटे, तो ये सब बोलता था।
मतलब कहने का कि आपको कोई जवान बोले तो आपका क्या होगा, हाँ हम है ही जवान, मतलब मेरा कहने का वही मैं बता रहा हूँ कि बाबा बाबा जो भी बुढ़े बुढ़िया जो भी आते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, तो वो उनको लगता था भी हमारे को ही बच्चा कहने वाला कोई है, ठीक है नी। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा के तो सारे बच्चे हो रहा, बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर आओ, जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है ना, मेहनत करो अपने आपको, यही नहीं सर मैं कुमार हूँ मैं कुमारी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ना कुमार हूँ ना कुमारी हूँ, ना जवान हूँ ना बुढ़ा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कभी जवान या बुढ़ी नहीं होती। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना है, और किसी का कहना नहीं मानो, और किसी की तरफ देखो मत, तो बाप से अच्छा और कोई है ही नहीं, बाकी तो सारे हैं ही बेचारे दुखी। अब दुखियों को देख करके सुख कहां से मिलेगा, एक परमात्मा ही है जो आनंद का सागर है, और उसको देखेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे, उसके गुणों को अपने में लाएंगे तो आनंद सागर बनेंगे। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए आए है ना, कुछ भी नहीं, हाथ खाली आए थे, कुछ भी नहीं था, अपना ये शरीर भी नहीं था, हम तो आत्मा आए थे ना, ये शरीर भी माता पिता ने दे दिया, शरीर के माता पिता ने बना रखा था, हमने उसमें प्रवेश किया उनसे ले लिया, ठीक है ना। अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है, ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं बल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो, जिसकी जरूरत नहीं ऐसे पैसे बर्बाद क्यों करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है, जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है, उनको फिर क्या मिलता है, गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, फिर हर होलीनेस, होली पवित्र को कहा जाता है, होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसा बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे, बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है, वहां रावण नहीं है, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है, राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता, रावण आकर पावन बनाता है वहां कोई पतित हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, ये पवित्रता की बात ही मत करो, सवेरे सवेरे क्या और कोई काम नहीं सूझता आपको, शरीर कैसे चल सकेगा ये पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी, क्योंकि उनको पता नहीं, ये जब दुनिया पवित्र थी वहां तो पवित्र बन करके ही जाना है ना, अब अपवित्र दुनिया है, ये खेल है, वैश्य आले शिव आले, पतित दुनिया पावन दुनिया, पतित दुनिया और पावन दुनिया, पहले है सुख फिर है दुख, कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गंवाई, ये अच्छी तरह से समझना है, हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है, बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए, घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है, मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए, हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे का मतलब
दूसरे से समझेंगे
नहीं, कहना नहीं मानेंगे, जिसका जिससे प्यार करते हैं प्यार माना, कहना मानना। हमने किसी से प्यार नहीं रखना माना, हमने दुनिया में किसी का कहना नहीं माना, सिर्फ शिव बाबा आपका ही कहना मानेंगे बस। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, हमने किसी और का कहना
नहीं।
जो प्यारे से प्यारी चीज है, जो प्यारे से प्यारी चीज है वो याद आनी चाहिए ना, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। और तो कोई सबसे प्यारा हो नहीं सकता, एक शिव बाबा ही है जो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा है। सबको देखते ऐसे हैं, ऐसे समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है, ये माता पिता बच्चे भाई बहन ये सब क्या है, कलयुगी बंधन है। अब हमको स्वर्ग में जाना है, ये सब कलयुगी बंधन है, कलयुगी बंधन है। सब हम सब देवी देवता, हम सब देवी संबंध में जा रहे हैं। अभी क्या है, कलयुगी बंधन, कलयुगी बंधन है। और सतयुग में क्या होगा, देवी संबंध। हम क्या कहां जा रहे हैं, देवी संबंध में जा रहे हैं। और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं, तुम बाप की याद में, तुम बाप की याद में अच्छी तरह से रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का करो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं, बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों को का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। हमारा कोई खर्चा ही नहीं, उनका तो दुनिया भर के झमेले हैं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वो देते नहीं, परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वे श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही, 21 जन्मों के लिए एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो, द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो बोलो, तुम क्या भीख मांगते हो, क्या भीख मांगते हो, आओ हम तुम्हें भीख देते हैं। ऐसी भीख देंगे जो तुम्हें फिर कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं। कौन सी ऐसी भीख है आपके पास भाई, ऐसी कोई भीख है आपके पास जो आप किसी को दे दो और उसको कुछ मांगने की जरूरत ही ना हो। उसे बाप से मिला दो कि तेरा बाप आ गया है, अब तो अपने बाप को पहचान। जिसका बाप सारे संसार का मालिक हो, उसे फिर संसार का कोई दुख हो ही नहीं सकता। तुमको ऐसी भीख देनी है जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाओ, फिर तुम्हें मांगनी नहीं पड़ेगी। बेहद का बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। बेहद के बाप को जानने से, सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है, सेकंड में बेहद का वर्षा। इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए, बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो, बैज सदा लगा कर रहो, इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है, तुमको दो बाप है, दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। ये एक ऐसा बाप है जिसे आपको कुछ नहीं मिलता, और दो बाप है, एक है शरीर का बाप, उससे वर्षा मिलता है, जो उसके बाप के पास जायदाद होती है वो दे देता है, और एक आत्माओं का बाप, उससे वर्षा मिलता है।
भाई इसके मुख
से ज्ञान सुनते हैं किसके? ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं, परंतु देने वाला तो शिव बाबा है ना। याद रखना है कि हमें दो से वर्षा मिलता है, इस ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा तो दलाल है, ये तो दलाल है, इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए, हर मनुष्य को देखो कौन कैसा है, उसी हिसाब से उसको समझाओ। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वे सब है जिस मानी यात्राएं, ये है रूहानी, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। जिस मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास है, तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहां खान पान आदि सब बड़ी रॉयल्टी से होता है, बेटाइम कभी खाते नहीं, बड़ी बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए, निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाप के गुण वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वे गुण अब भी धारण करने चाहिए। अब तुम देवी गुण धारण कर रहे हो, गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो, बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। देव से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं जैसे हम अशरीरी आए हैं, वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, क्या छोड़ो? लाठी भी छोड़ो, परंतु उसमें इसमें लाठी की बात नहीं, मतलब कहते लास्ट में लाठी को भी छोड़ दो। हाँ, यदि लाठी को पकड़ के चलने की आदत होगी तो अंत में फिर वो आपको रोक देगी। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा कोई ना, बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए, गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं, अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया, माँ मेकम याद करो, वर्षे को याद करो और देवी गुण धारण करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते, वो किताब उठा के पढ़ाए नहीं, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हुआ है, वे तो सन्यासी आदि कंठ कर लेते हैं, ये तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझ जाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में, शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? कभी नहीं गया। बाप तो सब कुछ जानते हैं, और कोई भला कहे साइंस जानते हो, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है, मुझे बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्या भूख सीखूंगा, साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, पावन बनो, इसमें साइंस कैसे समझूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर, वो क्या शास्त्रों से ज्ञान लेने की जालिए जाएंगे, ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा आदि दे दिया है, अर्थ कुछ भी पता नहीं। कमाल की बात यह है कि अर्थ कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे भूतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो क्या होगा, श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे, वे सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट, क्या में क्या बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पति से पावन, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनना है। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सत्य नारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने मक्खन खाया, वास्तव में ये है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको मक्खन दिखा दिया। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं वा नहीं? ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े कहेंगे, प्रजा पाठशाला तो नहीं कहेंगे ना, राजा की पाठशाला है ना। प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे, ये है नर से नारायण बनने की यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा कि लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो, तुम बैज पर समझा सकते हो, सर्विस कर सकते हो, बल कोई हंसी भी करे तो दो बाप की बात अच्छी है, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को ऐसा को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है कहां कहां, फिर झगड़ते हैं, कहां कहां फिर झगड़ते हैं। आज तुम जानते हो, तुम बच्चे, तुम सब आत्माएं हो, बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है, दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है, परंतु क्या रहती है, पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सत्युग है शिव आल्य पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, ये तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विसेबल बने हैं, सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी टीचर चाहिए आके हमें मुरली सुनाए, हमें योग कराए। टीचर तुम खुद बनो भाई, टीचर तुम खुद बनो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे नहीं, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बीच में आ गया, बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे, पैसे लेकर बाबा करेगा तो क्या करेगा। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अच्छा मीठे मीठे, सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, ट्रस्टी बनकर रहो, अनासक्त, कोई भी उसमें आकर्षण नहीं हो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे मत करो, स्वयं को देवता जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। एक प्यारे ते प्यारी चीज को, बाप को याद करो, उससे प्यारा कुछ है। जितना हो सके कल युगी बंधन, कल युगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत, जितना छूटते जाए अच्छी बात है। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हो, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो, पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। पूर्ति कला का अनुभव करने नहीं देगा, इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही आएगा, दुख ही आएगा। क्योंकि दुख पाएंगे फिर। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी हमारे पास ना हो, कोई अवगुण हमारे पास ना हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे, हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता शक्ति का अनुभव करो, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त माना अशरीरी, अव्यक्ति साइलेंस माना अशरीरी शांत अवस्था द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते बातचीत करते डायरेक्शन देते उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई, ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति बनानी है, फरिश्ता स्थिति बनानी है देह में रहते हुए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम